डॉक्टर ब्रूस वाल्ट के भजन व्याख्यान 24 2024 ब्रूस वाल्ट के और टेड हिल्डेब्रांट। यह भजन की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर ब्रूस वाल्ट के हैं। यह सत्र संख्या 24 मसीहाई भजन भजन 16 है। इसलिए हम विभिन्न तरीकों पर गौर कर रहे हैं जिनका उपयोग भजनहार के दिमाग में पूरी तरह से प्रवेश करने के लिए किया गया है। यदि आप इसे इस तरह से रखना चाहते हैं तो हमने आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर ध्यान दिया है। हमने ऐतिहासिक दृष्टिकोण को देखा और हमें आलोचना और आलोचना की विभिन्न शाखाओं के बारे में जानकारी दी गई है। फिर हमने कल अलंकारिक दृष्टिकोण पर ध्यान दिया। अब हम मसीहा के दृष्टिकोण पर निर्भर हैं, मसीहा के संदर्भ में भजन पढ़ते हैं या जैसा कि अमीराल्ट ने कहा है, अपनी बाईं आंख को ऐतिहासिक राजा पर रखते हुए, अपनी दाहिनी आंख को उस आदर्श राजा पर रखते हुए जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए अपना व्याख्यान प्रार्थना से शुरू करें। पिता, जैसा कि भजनहार ने कहा है, पंक्तियां हमारे लिए सुंदर स्थानों में गिरी हैं, अर्थात आप हमारे अंश हैं, आप हमारी विरासत हैं, आपसे अलग हमारा कोई भला नहीं है। आज हमें उस पुत्र के बारे में सोचकर खुशी हो रही है जिससे आप बहुत प्रसन्न हैं। और तूने हमसे कहा है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, उसे सुनो। और हम ऐसा करने का निर्णय लेते हैं। इसलिए जब हम भजनों पर ध्यान करते हैं और हम अपने भगवान पर ध्यान करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे विश्वास में सार, हमारे गुणों में व्यवस्था, हमारे कबूलनामे में आत्मविश्वास और जब हमारी परीक्षा होगी तो निष्ठा में उद्देश्य जोड़ देंगे। आप इन सभी अच्छी चीजों के लेखक हैं और हम इसके लिए आपकी प्रशंसा करते हैं। तो भगवान, भजनहार के साथ हम मसीह के नाम पर आपकी शरण लेते हैं। तथास्तु। ठीक है, मैंने व्याख्यान को कई भागों में विभाजित किया है। यह अब आपके नोट्स के पृष्ठ 314 पर है। सबसे पहले हम इस परिभाषा पर गौर करेंगे कि मसीहावाद से हमारा क्या तात्पर्य है। फिर हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे। फिर तीसरा, हम नए नियम में देखेंगे यीशु मसीह मसीहा के आदर्श की पूर्ति है। सबसे पहले और फिर बाद में व्याख्यान के दूसरे भाग में हम विशेष रूप से एक मसीहाई भजन को देखने जा रहे हैं जो उसके पुनरुत्थान से संबंधित है और वह भजन 16 होगा। लेकिन सबसे पहले बात मसीहा की परिभाषा की। मैं आपके नोट्स में इसकी व्युत्पत्ति या शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है यह बताने में असफल रहा। मसीहा हिब्रू मशियाच है। ग्रीक से अंग्रेजी में इसका अनुवाद मसीहा के रूप में किया गया है, लेकिन हिब्रू में इसका नाम मसीहा है। वह मूल मशाच से आता है। मशक का अर्थ है रंगना, धब्बा लगाना, मलना, मलना। हमने कल देखा कि कैसे राजा का अभिषेक किया जाता है कि भविष्यवक्ता अपनी कुप्पी या राम के तेल के सींग के साथ आएगा। वह राजा को भस्म कर देगा। वह सुगंधित तेल से राजा का अभिषेक करेगा। इसके द्वारा हमने कहा राजा भगवान की संपत्ति बन गया, उनका अभिषेक किया गया और इसलिए उन्हें भगवान के लिए अलग कर दिया गया। साथ ही उसे ईश्वर द्वारा नियुक्त राजा के रूप में मान्य किया गया। तीसरा, हमने कहा कि उस अभिषेक से राजा को अधिकार प्राप्त हुआ। तो यह मसीहा शब्द का मूल अर्थ है। इसका अर्थ है अभिषिक्त व्यक्ति। हालांकि अब जब हम मसीहा के बारे में बात करते हैं तो हम आदर्श राजा के बारे में बात कर रहे हैं। हम उस राजा के बारे में बात कर रहे हैं जो इतिहास के अंत में आदर्श एक सार्वभौमिक धर्मी राज्य का आदर्श लाएगा। इसलिए मैंने आपके नोट्स में लिखा था यह इसराइल को एक आदर्श राजा देने के ईश्वर के वादे का एहसास है, जो युग के अंत में धार्मिकता और शांति का सार्वभौमिक शासन स्थापित करेगा। मुझे यह नहीं कहना चाहिए था, ठीक है, मुझे लगता है कि इतिहास के अंत की तुलना में युग का अंत बेहतर है। अब हम इस धर्मशास्त्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं कि ईश्वर एक आदर्श राजा भेजने जा रहा है, जो युग के अंत में धार्मिकता के अनुसार उसकी 10 आज्ञाओं के अनुसार शासन स्थापित करेगा। बाइबल की कथा के अनुसार उत्पत्ति पहले से ही ईडन के बगीचे में पाई जाती है, जब भगवान ने कहा और सर्प को सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि जिस महिला ने खुद को सांप और उसके झूठ के साथ पहचाना है, भगवान हस्तक्षेप करेंगे। वह महिला में एक नया जोश भर देगा। वह स्त्री में शत्रुता भर देगा, ताकि वह सांप को अस्वीकार कर दे और उससे पहचान कर ले। यह पूर्णतः संप्रभु अनुग्रह था। इसलिए परमेश्वर ने सांप से कहा, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और इसके वंश और तेरे वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। तो यहां पहले से ही हमारे पास है कि स्त्री का एक वंश होने वाला है और स्त्री का वह बीज सांप को नष्ट करने वाला है और उसके वंश को नष्ट करने वाला है। तो यह कहा जाता है कि स्त्री के इस वंश में से वह तुम्हारा सिर कुचल देगा और तुम्हें नष्ट कर देगा। लेकिन इस प्रक्रिया में आप उसकी एड़ी को कुचल देंगे कि वह कष्ट सहकर इस राज्य की स्थापना करेगा। हमें यह अधिकार ईडन गार्डन में पहले से ही प्राप्त है। जैसा कि आप जानते हैं, शेष उत्पत्ति काफी हद तक स्त्री के बीज को अलग करने के उस बीज की पहचान करने का विषय है, जो सर्प के वंश पर विजयी होगा, जो उन लोगों को संदर्भित करता है जो परमेश्वर के राज्य के विरोधी हैं। तो मुझे लगता है कि ईव ने सोचा था कि यह कैन होगा। वह सांप का वंश निकला और इसके बजाय यह सेठ है। फिर आपके पास सेठ से लेकर नूह तक की पूरी वंशावली है। फिर नूह के पुत्रों में से शेम होगा, उसके पुत्रों में से हाम या येपेट नहीं। फिर शेम के पुत्रों में से इब्राहिम उत्पन्न होगा, और इब्राहिम से यह इसहाक होगा न कि इश्माएल। और फिर इसहाक का पुत्र एसाव नहीं बल्कि याकूब होगा। और फिर याकूब के पास 12 गोत्र हैं, और हमें बताया गया है कि यह यहूदा का गोत्र होगा, कि राजदंड यहूदा के गोत्र से नहीं हटेगा। और यहीं पर उत्पत्ति समाप्त होती है। जब तक हम दाऊद के पास नहीं पहुंचते, हम नहीं जानते कि यहूदा के गोत्र में कौन होगा। और वहां हमारे पास एक निर्णायक क्षण होता है, जब परमेश्वर दाऊद का राजा बनने के लिए अभिषेक करता है और फिर दाऊद के साथ वाचा में प्रवेश करता है और दाऊद को आश्वासन देता है कि उसका घर हमेशा के लिए बना रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि उसका वंश एक शाश्वत राजवंश होगा, और यह साकार होगा क्योंकि यह एक शाश्वत पुत्र में साकार होगा। अंततः सभी राजवंश खत्म हो गए, लेकिन उनका राजवंश कभी खत्म नहीं हुआ। और सांप लगातार दाऊद के घराने को नष्ट करने की कोशिश करता रहा। वास्तव में एक समय तो उसने जन्मदिन के केक पर लगी सभी मोमबत्तियां बुझा दी। राजाओं का संस्कार दाऊद के वंश या संतान की तुलना दीपक या ज्योति से करता है। मैं इसे जन्मदिन का केक मानता हूं। और उसने एक छोटे युवाश को छोड़कर सभी मोमबत्तियां बुझा दीं। और परमेश्वर ने उस एक झिलमिलाहट के माध्यम से अपना राज्य सुरक्षित रखा। और अंत में इसका अंत दाऊद के पुत्र यीशु, दाऊद के पुत्र होने के साथ होता है। और वह शाश्वत पुत्र बन जाता है। मैं यीशु को एक चालाक जन्मदिन की मोमबत्ती के रूप में सोचता हूं, जिसे शैतान ने बुझा दिया, लेकिन वह अनंत जीवन में वापस आ गया और वह हमेशा के लिए जीवित है। और उसे न केवल एक शाश्वत राजवंश का आश्वासन दिया गया है, बल्कि उसे एक शाश्वत साम्राज्य का भी आश्वासन दिया गया है। यह शासन का एक क्षेत्र है जिस पर 10 आज्ञाओं द्वारा शासन किया जाएगा, एक नैतिक साम्राज्य। और वह राज्य चर्च में वर्तमान युग तक कायम है, जो आज परमेश्वर का राज्य है, जो धार्मिकता का शासन स्थापित करता है। और उसे एक शाश्वत सिंहासन, उसके शासन का प्रतीक का आश्वासन दिया गया है। और इसलिए परमेश्वर ने कुछ समय के लिए सिंहासन को उसकी संतान से छीन लिया, फिर भी यह वास्तव में हमेशा दाऊद के घराने का था। तो यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने अपने बच्चों के साथ किया था जब वे मेरे लड़के जब वे छोटे थे। मैंने उन्हें लियोनेल ट्रेन सेट दिया था, लेकिन उन्होंने हमेशा ट्रांसफॉर्मर को पूरा ऊपर कर दिया और वे ट्रैक के चारों ओर लोकोमोटिव की दौड़ देखना पसंद करते हैं। और फिर हमेशा के लिए यह पटरी से उतर गया। और चूंकि वे नहीं जानते थे कि इसका उपयोग कैसे करना है, मैंने इसे ले लिया और इसे एक शेल्फ पर रख दिया जब तक कि वे इसे जिम्मेदारी से उपयोग नहीं कर सके। तो यह उनका था, लेकिन इसे तब तक के लिए छीन लिया गया जब तक कि वे इसका जिम्मेदारी से उपयोग नहीं कर लेते। और इसराइल के इतिहास में यही हुआ कि मध्यावधि काल में दाऊद के पुत्रों ने सिंहासन खो दिया। लेकिन अंततः मसीह, जैसा कि हमने धार्मिक स्तोत्र राजाभिषेक स्तोत्र की व्याख्या में देखा, आज वास्तविकता स्वर्ग में भगवान का सिंहासन है। स्वर्ग में भगवान के दाहिने हाथ पर मसीह का सिंहासन है। तो यह अविनाशी सिंहासन है। खैर, दाऊद के घराने के लिए यही पृष्ठभूमि है कि तुम्हारा वंश सर्वदा बना रहेगा और वह राज्य सर्वदा बना रहेगा और वह सिंहासन सदैव कायम रहेगा। यही दाऊद के घराने से एक आदर्श राजा की आशा का वास्तविक मूल है, जो एक सार्वभौमिक धर्मी राज्य की स्थापना करेगा। मोविनकेल जैसे लोग अपनी पूर्व कल्पनाओं के कारण की उत्पत्ति देर से हुई है, इसलिए वे डेविड के घर से शुरू करते हैं। अधिकांश शिक्षाविद ऐसा करते हैं, लेकिन बाइबल की कथा हमें ईडन गार्डन में वापस ले जाती है। खैर, यह मसीहाई आशा की उत्पत्ति और कुछ हद तक विकास है। अब हम इस मसीहाई अपेक्षा और मसीहाई आशा में साल्टर के योगदान को देखते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि भजन बड़े पैमाने पर राजा से संबंधित हैं और कई भजन राजा की प्रशंसा करते हैं और उसे बहुत आदर्शवादी शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। और इसलिए हमने देखा, उदाहरण के लिए भजन 2 में वह कहता है, हे मेरे बेटे, मुझसे मांग, मैं तुझे प्रेवी की छोर तक अन्य जातियों को दे दूंगा और तू उन्हें लोहे की छड़ से तोड़ डालेगा और तू इसलिए धर्ममय राज्य की स्थापना करो। यह भजन 110, हमने एक और राज्याभिषेक पूजा देखी जिसमें डेविड के बेटे की प्रतीक्षा थी और वह भगवान के दाहिने हाथ पर बैठाया जाएगा। वह एक राजा और पुजारी बनने जा रहा है जो एक सार्वभौमिक साम्राज्य की स्थापना करेगा। गुमकेल ने इनकी व्याख्या किसी वास्तविक व्यक्ति की अपेक्षा के रूप में नहीं की। उन्होंने इसकी व्याख्या भविष्य के राजा और मसीहा के संदर्भ के रूप में नहीं की। गुमकेल जर्मन शब्द के लिए यह होफस्टाहल था। कहने का तात्पर्य यह है कि यह अदालती अतिशोक्ति थी। यह एक विचार की अतिशोक्ति थी, लेकिन वास्तव में इस उम्मीद के साथ नहीं कि कोई इतनी बड़ी छवि भर देगा। इसके विपरीत मोविनकेल ने सोचा कि यह उनकी पुस्तक ही दैट कमथ में मसीहा को संदर्भित करता है, और मैं इसे आपके फुटनोट में उद्धृत कर रहा हूं। तो स्तोत्र राजा की महिमा करता है और राजा की स्तुति के इन स्तोत्रों के साथ समुद्र से समुद्र और किनारे से किनारे तक उसके शासन के बारे में विस्तार से बताता है। तो वास्तव में इसने इब्राहिम वाचा का विस्तार किया जो मिस्र की नदी से लेकर महान नदी फ्रात तक थी। यह इसे समुद्र से समुद्र और तट से तट तक विस्तारित करता है और इसे एक सार्वभौमिक और धर्मी राज्य बनाता है। पृष्ठ 315 परसी पर मैं भजनों से आगे बढ़ता हूँ जो राज्याभिषेक पर गाए गए थे, शायद राजा के जन्मदिन पर भी और अन्य क्षणों में आदर्श राजा और उम्मीद का जश्न मनाने के लिए डेविड एक आदर्श राजा की भविष्यवाणी की उम्मीद करते थे। वे वास्तव में प्रथम मंदिर काल के ऐतिहासिक राजा के लिए गाए गए थे। लेकिन जब स्तोत्र पूरा हो जाता है तो क्या होता है? यह निर्वासन में पूरा होता है जब इसराइल का कोई राजा नहीं होता। तो इसलिए ये भजन जो ऐतिहासिक राजा के लिए गाए गए थे और जो आने वाला था उसके विचार में चित्रित किए गए थे, वे अब राजा का संदर्भ बन गए हैं, अब भविष्य बन गए हैं। ये शाही स्तोत्र भविष्य के मसीहा पर आधारित हैं। तो जिस तरह से मैं इसे चित्रित करता हूँ वह यह है कि राज्याभिषेक के समय, उदाहरण के लिए, इन भजनों को ऐतिहासिक राजा के कंधों पर रखा गया था, जिन्होंने आदर्श की आशा को देखने और सुनने के लिए प्रस्तुत किया था। लेकिन सभी राजाओं के कंधे बहुत छोटे थे और बैंगनी वस्त्र उनसे फिसल गए, इसलिए उन्हें उत्तराधिकारी पर डाल दिया गया। लेकिन प्रत्येक उत्तराधिकारी काफी हद तक अपने पूर्ववर्ती से छोटा था, जब तक कि अंततः कोई राजा नहीं रहा। तो इसराइल के पास इन शाही भजनों की एक अलमारी बची है जो उन्हें पहनने के लिए एक राजा की प्रतीक्षा कर रही है। यह तब तक नहीं है जब तक यीशु इन भजनों को पहनने के योग्य नहीं हो जाता है कि वह इस शाही मसीहाई अपेक्षा और आदर्श में लिपटा हुआ है। मसीहावाद में योगदान देने वाला एक अन्य कारक अंतर्विधान काल का सर्वनाशकारी साहित्य है। सर्वनाशकारी साहित्य की विशेषता द्वैतवाद, उग्र द्वैतवाद है। तो सर्वनाशी साहित्य में आपने वर्तमान युग को भविष्य के युग से मौलिक रूप से भिन्न माना। इसके अलावा वर्तमान युग को पाप, मृत्यु और बुराई का समय माना जाता है। भविष्य का युग पाप रहित, मृत्यु रहित आदर्श युग है। वर्तमान दुष्ट युग शैतान के शासन के अधीन है। भविष्य का युग मसीहा के शासन के अधीन है। इस साहित्य में अब यह अपेक्षा की जाती है कि यह मसीहा, कि यीशु स्वयं को मनुष्य के पुत्र के रूप में पहचानता है, शुरू से ही ईश्वर के साथ था। वह पृथ्वी पर धार्मिकता का यह नया नियम लाएगा। इसलिए उनमें इस युग और आने वाले युग के बीच एक आमूलचूल द्वंद्व था। उन्होंने इसे एक प्रलयंकारी घटना के रूप में देखा जो शैतान के अधीन पुराने युग को मसीह के अधीन नए युग से अलग कर देगी। तो मसीह कहेंगे, जैसे वह नए युग का परिचय दे रहे हैं, मैंने शैतान को स्वर्ग से गिरते देखा, जिसका अर्थ है लूक 10:18, जिसका अर्थ है कि वह अपना वर्चस्व खो देता है और वह शैतान से बड़ा है और वह उस पर विजय प्राप्त करेगा। वह एक नए युग का सूत्रपात कर रहे हैं। निस्संदेह इसीलिए जॉन बैप्टिस्ट स्वर्ग के राज्य के लिए पश्चाताप का संदेश देते हुए आते हैं। यही वह प्रलयंकारी घटना है जो मसीहा से जुड़ी है। यह वह समय होगा जब आप दुष्टों को नष्ट कर देंगे और जो लोग पापों से पश्चाताप करेंगे वे मसीहा के अधीन धार्मिकता के राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार होंगे। तो वह चित्रित करता है कि मसीह आत्मा के साथ आ रहा है, लोगों को पवित्र बना रहा है। वह इसे आग के समय के रूप में चित्रित करता है जब न्याय होगा और भूसी जला दी जाएगी और धर्मी राज्य में प्रवेश करेंगे। इसलिए उन्हें पश्चाताप के साथ बपतिस्मा दिया जाता है और मसीहा के तहत इस नए युग के लिए तैयार किया जाता है। फिर वह सब इस मसीहाई अपेक्षा में प्रवेश कर रहा है। फिर हम मसीह के पास आए और जॉन बैप्टिस्ट ने कहा कि यह आदर्श राजा है और मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि उसकी चप्पल की कुंडी खोल सकूं। लेकिन जब ईसा मसीह आते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ईसा मसीह के दो आगमन होने वाले हैं। यह पहला आगमन है जब वह आएगा और उसे कष्ट सहना पड़ेगा। वह पाप के लिए कष्ट सहने जा रहा है और वह अपने ऊपर मृत्यु का दंड लेने जा रहा है। यह उनके दूसरे आगमन पर होगा कि वह सार्वभौमिक आदर्श साम्राज्य की स्थापना करेंगे। लेकिन इस युग में अपने पहले आगमन पर, जब वह पाप के लिए पीड़ित होने जा रहा है और वह मृत्यु का अनुभव करने जा रहा है, उसी समय वह पहले से ही नए युग का उद्घाटन कर रहा है। तो आपके पास यह है कि वास्तविक युगांत शास्त्र में जो ज्ञात है वह यह है कि वह अब नए युग का उद्घाटन कर रहा है, लेकिन यह कोई कट्टरपंथी द्वंद्व नहीं है। यीशु राज्य के रहस्यों और जो छिपाया गया था उसके बारे में बात करते हैं। सर्वनाश का पुराना मॉडल, वर्तमान दुष्ट युग और भविष्य में धार्मिकता का युग क्या है, यह अब और अधिक विस्तारित हो गया है। तो आपके पास मनुष्य का पुत्र है जो गेहूं का बीज बो रहा है, लेकिन साथ ही शैतान अभी भी सक्रिय है। वह ईसा मसीह से कमतर है, लेकिन फिर भी क्रियाशील है। वह खरपतवार बो रहा है और दोनों भविष्य तक एक साथ बढ़ रहे हैं, जब फिर से उस समय, जैसा कि हम कहते हैं, खरपतवार या जंगली घास से गेहूं का आमूलचूल अलगाव होगा। इसलिए अब हमारे पास केवल एक साधारण द्वंद्व के बजाय एक नया मॉडल है। हमारा पहला आगमन तब होता है जब मसीह पाप और मृत्यु के लिए कष्ट सह रहा है, लेकिन साथ ही वह स्वर्ग में चढ़ गया है और वह अपने राज्य में स्थापित हो गया है, लेकिन यह एक मिश्रण है। हम युग के अंत में समाप्ति की प्रतीक्षा करते हैं। तो यह नए नियम की एक प्रकार की रूपरेखा है, जब मेरे पास मसीहा के दो आगमन और उसकी पूर्ति के दो पहलू और रहस्यमय रूप हैं। और फिर मैं पृष्ठ 316 पर न्यू टेस्टामेंट में स्तोत्र की भूमिका के बारे में बात करता हूँ। स्तोत्र मसीह के कष्टों और मसीह की महिमा के बारे में भी बताता है। जैसा कि पीटर डायस्पोरा के चर्च से कहता है, वह कहता है, मसीह से पहले उन्होंने स्पष्ट रूप से एक साथ नहीं रखा था कि कैसे मसीहा को कष्ट सहना होगा और फिर भी वह शासन करेगा। वे मसीह के कष्टों को मसीह के शासनकाल के साथ नहीं जोड़ सके। लेकिन नया नियम मसीह के जुनून और मसीह की विजय दोनों के लिए स्तोत्र का उपयोग करता है और यह स्पष्ट करता है कि वे इन पहले आगमन और दूसरे आगमन से संबंधित हैं। मैं कहता हूं कि नया नियम सीधे तौर पर पुराने नियम को 283 बार उद्धृत करता है और इनमें से 116 बार भजन संहिता की पुस्तक के उद्धरण हैं। दूसरे शब्दों में, पुराने नियम के 41% उद्धरण भजन संहिता की पुस्तक से लिए गए हैं। मैं यह भी नोट करता हूं कि भजन की पुस्तक का उपयोग नए नियम में तीन अलग अलग तरीकों से किया गया है। इसका उपयोग ईश्वर के प्रमाण पाठ के रूप में किया जाता है, जो दर्शाता है कि वह ईसा मसीह के करियर पर संप्रभु है और उसने ईसा मसीह के जीवन में महत्वपूर्ण घटनाओं की भविष्यवाणी की थी, और इसलिए मसीह इन भजनों की पूर्ति है जिन्होंने मसीह के बारे में भविष्यवाणियां की हैं। इसलिए उदाहरण के लिए, और आमतौर पर कुछ हद तक यह क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि आप इस तथ्य से नाराज हो सकते हैं कि मसीहा, उन्हें उम्मीद थी कि मसीहा इस नए युग, इस राजनीतिक युग को लाएगा जिसने रोम को नष्ट कर दिया होगा, और फिर भी सच्चाई यह है कि यह मसीह मरने वाला है। आप उसे कैसे समझाएंगे? उदाहरण के लिए, यीशु फरीसियों और मुख्य पुजारियों को भूमि के मालिक और उसकी दाख की बारी का दृष्टांत देता है, और इसलिए वह कहता है, इस जमीन के मालिक के पास एक अंगूर का बगीचा था और उसने इसकी सुरक्षा के लिए इसके चारों ओर एक दीवार लगा दी। उसने अंगूरों को कुचलने के लिए उसके भीतर एक शराब का कोल्हू खोदा और उन्होंने इसकी देखभाल के लिए एक वॉच टावर बनवाया। इसलिए उसने अंगूर के बगीचे के लिए सब कुछ तैयार कर लिया था। फिर जब वह दूर की यात्रा पर गया, तो उसने दाख की बारी किराए पर दे दी। परंतु जब अंगूर के बगीचे से फसल काटने का समय आया, तो उसने अपने अंगूर के बगीचे से फल लाने के लिए नौकरों को किराएदारों के पास भेजा। इस पर किराएदारों ने जमींदार के नौकरों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। उन्होंने उन्हें मार डाला। उन्होंने उन पर पथराव किया, और इसलिए उसने और नौकर भेजे और उन्होंने उनके साथ भी वैसा ही किया। और फिर आखिरकार जमींदार ने कहा, मैं उनके पास अपना बेटा भेजूंगा। मुझे लगता है कि सेवक जॉन द बैप्टिस्ट जैसे भविष्यवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। और अब यहाँ स्वयं पुत्र अर्थात यीशु मसीह आता है, परंतु उन्होंने उसके साथ वैसा ही किया और उसे पकड़कर मार डाला। और यीशु कहते हैं कि यह पूर्णता है। क्या आपने कभी नहीं पढ़ा कि भजन 118 में श्लोक 23 के बारे में क्या था? मुझे लगता है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने अस्वीकार कर दिया था वह मुख्य आधारशिला बन गया है। मुझे अंगूर के बाग को थोड़ा और जारी रखना चाहिए था क्योंकि उसने कहा जमींदार क्या करेगा, परंतु वह दाख की बारी ले लेगा, वह किराएदारों को नष्ट कर देगा, वह दाख की बारी उनसे छीन लेगा और उसे नए किराएदारों नए लोगों को दे देगा। और यह चर्च का इतिहास है क्योंकि उसने राज्य को इसराइल से छीन लिया और उसने इसे सौंप दिया। मैं दृष्टांत की व्याख्या करूंगा। उसने इसे गैर यहूदी ज्यादातर गैर यहूदी चर्च को सौंप दिया। इस प्रकार दूसरी शताब्दी तक चर्च लगभग पूरी तरह से गैर यहूदी था और उसने इसे नए लोगों को दे दिया। और वह कहते हैं कि यह उस भविष्यवाणी की पूर्ति है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने अर्थात मसीहा ने अस्वीकार कर दिया था वह राज्य की मुख्य आधारशिला बन गया है, जिससे उनके रिजेक्शन का अंदेशा हो गया था। फिर आपके पास एक और है, मैं सिर्फ प्रत्यक्ष पूर्ति का उदाहरण दे रहा हूं। यहूदा के मामले में आपके पास यह है, और यहां वह है जिसे यीशु ने चुना और उसने उसे धोखा दिया, यीशु को धोखा दिया। और यीशु कहते हैं यह भजन 41 की पूर्ति है जहां दाऊद के अनुभव से जब वह किसी अवसर पर बीमार था और उसके दुश्मनों ने उसकी निंदा की और उसके खिलाफ बातें की। फिर वह कहता है मेरा अपना घनिष्ठ मित्र मेरा विश्वासपात्र मित्र जिसके साथ मैं अपनी रोटी बांटता था वह मेरे विरुद्ध हो गया। और वह मसीह और यहूदा की एक प्रकार की भविष्यवाणी थी। उसने अपनी रोटी उसके साथ बांटी और वह उसके विरुद्ध हो गया, ताकि भजन एक भविष्यवाणी बन जाए जो यहूदा में पूरी हो। तो यह एक तरीका है जिससे स्तोत्र का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग हमारे प्रभु यीशु मसीह के करियर में एक भविष्यवाणी प्रमाण पाठ की पूर्ति के रूप में किया जाता है। यह पूछने के लिए बहुत बड़ा सवाल हो सकता है, लेकिन यदि आप डेविड के भजन को देखें कि मेरे दोस्त मेरे खिलाफ हो गए हैं, तो आप इसे कभी भी भविष्यवाणी के रूप में नहीं पढ़ेंगे। नहीं, लेकिन यीशु कहते हैं कि यह एक भविष्यवाणी है। सही? आप उन दोनों को एक साथ कैसे रखते हैं? क्योंकि सवाल यह उठता है कि जब आप उस भजन को मूल रूप से पढ़ रहे होते हैं जब डेविड ये शब्द दे रहा होता है कि मेरे ही भरोसेमंद दोस्त ने मुझे धोखा दिया है। सवाल यह है कि क्या उस मामले में डेविड को समझ आया कि यह एक भविष्यवाणी थी? मुझे लगता है कि जब उन्होंने राज्याभिषेक समारोह में जो मेरे दाहिनी ओर बैठे थे कहा था कि उनके पास एक सार्वभौमिक राज्य होगा, तो यह एक वास्तविक भविष्यवाणी थी। हम इसे भजन 16 में देखने जा रहे हैं जहां वह कहता है कि वह किसी का भ्रष्टाचार नहीं देखेगा जो स्वयं का नहीं हो सकता है। तो आपके पास एक और वास्तविक भविष्यवाणी है, दूसरी ओर आपके पास टाइपोलॉजी है। जब आप किसी प्रकार से गुजर रहे होते हैं तो आप नहीं जानते कि वह प्रकार किसी भविष्य की घटना के लिए भविष्यवाणी के रूप में अभिप्रेत है। तो उदाहरण के लिए आपके पास बिलाम और उसके गधे के साथ है। बिलाम और उसका गधा मोआब के राजा का एक प्रकार है, बालाक नबी बिलाम के साथ। इस प्रकार जैसा बिलाम के लिए गधी थी वैसा ही बालाक के लिए बिलाम है, अत बिलाम गधे के समान है। तो गधा बालाम का एक प्रकार है और बालाम बालाक का एक प्रकार है। तो क्या हुआ कि गधा प्रभु के दूत को देख सका? उसके पास एक अलौकिक दृष्टि थी परंतु बालाम उसे नहीं देख सका। तो प्रकार की पूर्ति में बिलाम वह देख सकता है जो मुआब का राजा बालाक नहीं देख सकता। और इसके अलावा गधा 3 बार प्रभु के दूत को देखता है। पहली बार तो चलो देखते हैं पहली बार में क्या करता है। वह एक मैदान में चला जाता है। दूसरी बार उसने बिलाम का पैर दीवार से कुचल दिया। तीसरी बार वह उसके नीचे ही लेट गया। और हर बार यह बिलाम के लिए अधिक कष्टकारी हो जाता है। और वही बात बिलाम 3 भविष्यवाणियां देता है। उसकी आंखें खुली हुई हैं। वह कहता है कि वह चीजें देखता है। और हर बार यह रहस्योद्घाटन अधिक दर्दनाक हो जाता है, क्योंकि वह मुआब के राजा पर इसराइल के राजा के प्रभुत्व को देखता है। फिर पाठ कहता है कि तीसरी बार ऐसा हुआ, गधे ने प्रभु के दूत को देखा और बिलाम को पीड़ादायक प्रतिक्रिया दी। इसमें कहा गया है कि बालाम तीसरी बार क्रोधित हुआ। और प्रकार की पूर्ति में तीसरी बार जब वह यह भविष्यवाणी करता है तो हमें बताया जाता है कि बालाक क्रोधित हो गया था। और चरम क्षण वह होता है जब वह गधे को पीटना चाहता है तो गधा चमत्कारिक ढंग से बोलता है। और यह एक प्रकार का बिलाम है जो अब चमत्कारिक ढंग से बोलता है। इसमें कहा गया है कि भगवान ने गधे का मुंह खोला और अब भगवान ने मुंह खोला और शब्दों को बालाम के मुंह में डाल दिया। तो यह एक वास्तविक तस्वीर है। मेरा कहना यह है कि जब बालाम इस अनुभव से गुजर रहा है तो वह नहीं जानता कि वह एक प्रकार की बड़ी घटना बन रहा है। और मुझे लगता है कि टाइपोलॉजी इसी तरह काम करती है। जब आप इससे गुजर रहे होते हैं तो आप इस बात से अवगत नहीं होते हैं कि यह एक बड़ी घटना की तस्वीर बनने के लिए भगवान की निगरानी में है। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि डेविड को उस विशेष मामले में पता था कि वह एक प्रकार का व्यक्ति था। यह केवल बाद के रहस्योद्घाटन और यीशु के अनुभव में है कि आपको एहसास होता है कि यह एक दिव्य इच्छित प्रकार था। और यहाँ प्रकार की पूर्ति है। तो हो सकता है कि यह मददगार हो बिल मामले को स्पष्ट करने के लिए एक उपयोगी प्रश्न के लिए। ठीक है, तो हम स्तोत्र की भूमिका पर वापस जाते हैं। इसे ईसा मसीह के निकट प्रमाण पाठ के रूप में उद्धृत किया गया है। स्तोत्र का उपयोग प्रेरितों द्वारा सिद्धांत सिखाने के लिए भी किया जाता है। इसलिए उदाहरण के लिए जब रोमियो 3 में पॉल मनुष्य के भ्रष्टाचार और पाप की सार्वभौमिकता के बारे में बात करना चाहता है तो वह ऐसा करने के लिए कई भजनों का हवाला देता है, जिसमें भजन 14 और समानांतर जो भजन 53 है। तो भजन भविष्यवाणी सिखाते हैं और भगवान के दाहिने हाथ पर बैठा यह चर्च की स्वीकारोक्ति में पूजा पाठ का हिस्सा बन जाता है। वे 3 तरीके हैं जिनसे स्तोत्र का उपयोग किया जाता है। पृष्ठ 316 पर मैं स्तोत्र की भूमिका के बारे में बात कर रहा हूं। इसका प्रयोग 3 प्रकार से किया जाता है। और फिर हमने कहा कि यीशु मसीह ने 50 से अधिक बार भजनों का उल्लेख किया है। और फिर अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि यीशु ने कहा कि भजन उसके बारे में बोलते हैं। लूक 24 से जब वह एमॉस रोड पर शिष्यों से मिलता है तो वह उनसे कहता है, यह वही है जो मैंने तुमसे तब कहा था जब मैं तुम्हारे साथ था। मूसा की व्यवस्था, भविष्यद्वक्ताओं और भजनों में जो कुछ मेरे विषय में लिखा है वह सब पूरा होना चाहिए। तो यह यीशु ही हैं जो हमें स्वयं के संदर्भ में भजन पढ़ने के लिए कहते हैं। और मैं इस व्याख्यान के अंत में इस बारे में और अधिक बताऊंगा कि वे मसीह के बारे में कैसे बात करते हैं। लेकिन किसी भी कीमत पर यीशु ने कहा कि हमें मसीह के संदर्भ में भजन पढ़ना चाहिए। फिर भी जब मैं इंजील शिक्षाविदों की टिप्पणियां पढ़ता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है कि वे मसीह के प्रकाश में भजनों को कितना कम करते हैं या पढ़ते हैं, जैसा कि हमें बताया गया है। पृष्ठ 317 पर मैं इन 50 अंशों में से कुछ का हवाला देता हूँ और इसे मसीह के जुनून, उनके उत्साह और उनकी महिमा में विभाजित करता हूँ। इसलिए हम ऐसे भजन लेते हैं जो उनके जुनून को दर्शाते हैं। इसलिए जब वह जॉन में कहता है, मेरी आत्मा परेशान है, तो वह भजन 6 का हवाला दे रहा है। जब वह क्रूस पर पूछता है, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? वह भजन 22 का हवाला दे रहा है। जब यूहन्ना कहता है, अपने वस्त्र बांट दिए, अपने वस्त्र बांट दिए, यह भजन 22 का संदर्भ है। क्रूस पर जब वह कहता है, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, यह भजन 31 से एक उद्धरण है। बिना गए वह सब वहां लिखा हुआ है, और मेरे द्वारा आपको यह सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुद्दा यह है कि आप देख सकते हैं कि वह डेविड को अपने ही एक प्रकार या अपने बारे में भविष्य सूचक भविष्यवाणी के रूप में देख रहा है, और इसलिए वह स्वयं को शाही अपेक्षा की पूर्ति के रूप में देखता है। तो यह राजा से संबंधित 10 स्तोत्रों से कहीं अधिक है। संपूर्ण स्तोत्र संपूर्ण नहीं है, लेकिन अधिकांश स्तोत्र राजा के बारे में है। इसलिए वे ईसा मसीह का जिक्र कर रहे हैं। इसलिए जब वह मंदिर को साफ करता है, तब भी यह उसके घर के लिए उत्साह है जो भजन 69 से निकलता है। और नए नियम में आपके पास लगातार ऐसा है कि वे भजन को एक भविष्यवाणी या यीशु मसीह के एक प्रकार के रूप में देखते हैं। यह मुझे पृष्ठ 318 पर ले जाता है, और मैं मसीहाई भजनों के प्रकारों के बारे में बात करता हूँ। मैं इसे विभाजित करता हूँ और यह डेलिट्स्ट से अनुसरण कर रहा है। ये 4 प्रकार के होते हैं। एक को अप्रत्यक्ष और विशिष्ट कहा जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, डेविड सांसारिक राजा अपने सबसे बड़े बेटे स्वर्गीय राजा का पूर्वाभास देता है। मुझे नहीं लगता कि डेविड को आवश्यक रूप से पता था कि वह एक प्रकार का व्यक्ति था जैसा कि हमने पहले बताया था, लेकिन संपूर्ण रहस्योद्घाटन के प्रकाश में आप केवल संपूर्ण रहस्योद्घाटन के प्रकाश में टाइपोलॉजी देखते हैं। समग्र रहस्योद्घाटन के प्रकाश में आप देख सकते हैं कि कैसे ऐतिहासिक राजा यीशु मसीह के अपने महानतम पुत्र का एक प्रकार है। तो राजा को संदर्भित करने वाले ये भजन अप्रत्यक्ष रूप से कम यीशु मसीह के विशिष्ट हैं, क्योंकि नया नियम इसे इसी तरह पढ़ता है। दूसरे, इसे आप विशिष्ट भविष्यवाणी कह सकते हैं, अर्थात डेविड मसीह का एक प्रकार है, लेकिन वह अपने अनुभव को संदर्भित करने के लिए भाषा का उपयोग करता है जो कुछ हद तक अतिरंजित है, लेकिन इसकी पूर्ति विशिष्ट रूप से मसीह में होती है। यह उदाहरण के लिए भजन 22 में होगा, जब डेविड शायद किसी संकट से गुजर रहा है और भगवान द्वारा त्याग दिया गया महसूस करता है, फिर भी वह क्रूस के संदर्भ में अपने अनुभव का वर्णन करता है। तो वह अपनी प्यास चित्रित करता है। वह चित्रित करता है कि वे उसके वस्त्र आपस में बांट रहे हैं। जैसा कि हमने भजन 22 को देखा, भाषा उनके अपने ऐतिहासिक अनुभव से परे है, और यह वास्तव में ईसा मसीह की भविष्यवाणी बन जाती है जब यह ईसा मसीह के जीवन में अक्षरश पूरी हो जाती है। इसलिए मैं उन्हें विशिष्ट भविष्य सूचक कहता हूँ। डेविड के कष्ट और महिमा यीशु मसीह का प्रतीक हैं, लेकिन उनकी भाषा उनके अपने अनुभव से परे है और यीशु मसीह में अपनी पूर्णता पाती है। तो यह दूसरा प्रकार है। यह प्रकार और भविष्यवाणी का मिश्रण है। कुछ भजन विशुद्ध रूप से भविष्य सूचक हैं, और वे भजन 110 के समान होंगे, जब प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने हाथ पर तब तक बैठो जब तक मैं शत्रुओं को तुम्हारे चरणों की चौकी न बना दूं। आप एक विशिष्ट भविष्यवाणी पढ़ सकते हैं, लेकिन यह यीशु मसीह में विशिष्ट रूप से पूरी हुई है। ये प्रभु के सिंहासनारोहण स्तोत्र जो हमने भजन 93 और 99 में देखे थे, जहां प्रभु शासन करते हैं, उनकी व्याख्या नए नियम में यीशु मसीह और उनके शासनकाल के संदर्भ के रूप में की गई है। तो ये 4 तरीके हैं जिनसे मैं भजनों का उपयोग देखता हूँ। खैर, मुझे लगता है कि यह आपको भजनों की व्याख्या में मसीहाई दृष्टिकोण के लिए कुछ अभिविन्यास देता है। तो यदि आप कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं तो यह प्रश्नों का समय है। बिल, मैं आपके इनपुट के लिए उत्सुक हूँ और एड आपके लिए। क्या यह इतना स्पष्ट था? क्या यह इतना स्पष्ट है? हाँ, यह बिल्कुल स्पष्ट था। भविष्यवाणी पर लौटते हुए, एक चीज जो मुझे नहीं पता कि मैंने इसे सीखा है या बस इसके बारे में सोचा है, वह यह है कि इन भविष्यवाणियों पर ऐसा अक्सर होता है कि ऐसा नहीं लगता कि यह आपकी पहली श्रेणी है, अप्रत्यक्ष या विशिष्ट। मेरा मतलब है, मैं मिस्र से बाहर होशे के बारे में सोच रहा हूँ, मैंने अपने बेटे को बुलाया है। तो मेरा मतलब है, यह एक सामान्य प्रश्न है। क्या इसका एक हिस्सा यह है कि ईश्वर एक ही तरह की चीजें बार बार करता है? तो पहली बार कुछ घटित होता है, क्योंकि ईश्वर चीजों को चक्रीय रूप से करता है, तो यह एक प्रकार का हो जाता है कि क्या घटित होने वाला है। मेरा मतलब है, क्या मुझे लगता है, मेरा मतलब है, जो सवाल मैं लोगों से बहुत सुनता हूँ वह है, जैसे वे एक अनुच्छेद पढ़ेंगे, आप जाएं, ठीक है, यह कोई भविष्यवाणी नहीं है। नया नियम कहता है कि यह एक भविष्यवाणी है। इसलिए मैं हमेशा इसे समझाने के तरीकों की तलाश में रहता हूँ। तो टाइप करना ऐसा करने का एक अच्छा तरीका है। प्रकार इसे करने का एक तरीका है। मुझे लगता है कि यह विचार कि होशे में मिस्र से बाहर मैंने अपने बेटे को बुलाया है। देखिए, मुझे लगता है कि यह एक संदर्भ है कि इज़राइल ईश्वर का पुत्र है। इज़राइल ईश्वर के परम पुत्र का प्रतीक है। ठीक है। हाँ, तो मैं इसे एक प्रकार के रूप में देखता हूँ जो मैथ्यू के पूरे 6 जन्मों की कथा है। वे सभी भविष्यवाणी में पूर्णता पाते हैं। तो उनमें से कुछ बेथलेहम के बुद्धिमान लोगों के साथ बेथलेहम की तरह बहुत सीधे हैं, लेकिन फिर निर्दोषों के वध के साथ, और वह इसे यिर्मयाह में देखता है कि जैसे इज़राइल कैद में जा रहा है, वह इसे एक प्रकार के रूप में देखता है, लेकिन एक प्रकार है, एक दिव्य इच्छित चित्र। इससे पहले कि आप इसे दैवीय रूप से इच्छित चित्र के रूप में देख सकें, इसमें पूर्ण रहस्योद्घाटन होता है। तो एक प्रकार भविष्य में एक बड़ी घटना का, एक बड़ी घटना का एक दिव्य इच्छित चित्र है। ठीक है, टाइपोलॉजी से मैं यही समझता हूँ। यह एक बड़ी घटना की तस्वीर है, लेकिन यह एक दैवीय उद्देश्य वाली तस्वीर है। निस्संदेह इस बिंदु पर जो मुद्दा उठाया गया है वह यह है कि क्या हम मार्श का अनुसरण करते हैं और एकमात्र वैध प्रकार वे हैं जो हमें नए नियम में दिए गए हैं, या क्या हम उन प्रकारों को देखने के लिए स्वतंत्र हैं जो नए नियम में व्यक्त नहीं हैं? मेरी राय है कि यह पवित्र शास्त्र की व्याख्या करने का एक तरीका है जिसके प्रकार देखने के लिए हम स्वतंत्र हैं। इसके साथ समस्या यह है कि आपका उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ईश्वर को सुनने का एक और तरीका है कविता में। इसलिए मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक वैज्ञानिक पद्धति से कहीं अधिक है जिसे हम पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस बिंदु पर आत्मा के प्रति खुलापन है। तो आपके पास पॉल और गलाटियंस और 2 पहाड़ों के साथ क्या है? वे उसके दिमाग में टाइप हैं। हाँ, खैर, वास्तव में यह एक है। मुझे लगता है कि वह कहता है कि वह रूपक बना रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं था। मुझे लगता है कि जब वह रूपक लगा रहा है तो वह वहां जो कह रहा है वह यह कह रहा है कि यह पाठ में जो है उससे कहीं अधिक है। ठीक है, तो क्या यह प्रकारों से परे होगा? मुझे लगता है कि सिनाई और यरूशलेम और हाजिरा और सियोन और सारा के मामले में मुझे लगता है कि यह हमें पाठ में जो है उससे परे ले गया है। मुझे उस पर और गौर करना होगा, लेकिन यह इस पर मेरी प्रारंभिक प्रतिक्रिया है। यह भजन की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर ब्रूस वाल्ट के हैं। यह सत्र संख्या 24 मसीहाई भजन भजन 16 है।